الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جو حدیث شریف بیان کی ہے کہ جو فساد کا وقت ہوتا ہے یعنی سنتیں جب گم ہو جائیں اور سنتیں جب ان پر سنتوں پر عمل کرنا یعنی مشکل ہو جائے سنتیں معاشرے میں نہ رہے اس وقت کسی سنت کا جو احیاء ہے وہ 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اس کو اجر ملے گا. واقعتاً یہ بات صحیح ہے کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا حدیث شریف کے مطابق ہے کہ میرے سنت پہ چلنے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ کوئی انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہو یا یہ ہے کہ کوئی جو ہے کانٹے ہو کانٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کمبل ڈالے جس طرح اس کو کھینچا جاتا ہے تو اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال اللہ جل شانہ کا معاملہ ان چیزوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے جیسے مشکل ہوتے جاتے اس طرح اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے. ہمارے سلوک کے بھی مجاہدات ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن اگر سنتوں پہ چلنے کا مجاہدہ انسان کرے تو پھر ان کو سلوک کے مجاہدات کی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ وہ مجاہدات اسی میں ہو جاتے ہیں کیونکہ نفس اسی کے ذریعے سے ٹرین ہو جاتا ہے. کیونکہ نفس کے اوپر جب مشقت آتی ہے اور انسان ہمت سے کام لے کر اس کام کو جاری رکھتا ہے تو نفس اس کے ساتھ ماننا شروع کر لیتا ہے اور پھر نفس شریعت کے مقابلے میں نہیں آتا. کیونکہ شریعت ظاہر سنت پر چلنی ہے تو اس وجہ سے پھر شریعت کے مقابلے میں نفس نہیں آتا اور انسان کا وہ کام ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ انسان مجاہدہ کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اتنا عقل سے کام لیں کہ اللہ کی بات ماننا اور رسول کی بات ماننا ہمارے لیے مفید ہے, لوگوں کی بات مان لینا اپنے ساتھ وہ ہے کہ وہ کر لیں جس کو کہتے ہیں نا ایک مراقبہ کر لے, ایک سوچے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا ایک دفعہ کیا تھا جس کا مجھے ابھی تک فائدہ مل رہا ہے اور وہ یہ تھا کہ جس وقت ہماری داڑھی جو ہے نا وہ آ گئی تو چھوٹی چھوٹی تھی تو اس وقت تو معاشرے کے اندر ہمارے کم از کم خاندان میں اس عمر میں داڑھی رکھنے کے وہ رواج نہیں تھا. تو وہاں ہمارے علاقوں میں مطلب جو داڑھی رکھتے ہیں تو ان کو شیخہ شیخہ کہتے ہیں اور پھر اس طرح تنگ کرتے ہیں, بالخصوص جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو اس وقت داڑھی رکھ لی تو لوگوں نے جتنا تنگ کرنا اتنا ہی اللہ تعالیٰ مجھے اس پر مضبوط کرتا رہا. مطلب جو ہے نا وہ باقاعدہ میں ذہن میں یہی آتا تھا کہ کون ہوتے ہیں میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے, میں جیسے بھی کروں. تو اس دوران میں نے یہ مراقبہ میں تو مراقبہ اس کو سمجھتا ہوں, بہرحال اس وقت تو مراقبہ کا نام بھی نہیں معلوم تھا, کہ سوچا کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں یعنی جو اللہ کے رسول کی بات کو اچھا سمجھتے ہیں, ان کا ماحول اچھا ہوتا ہے, وہ جو ہے نا مطلب اچھے اچھے کام کرنا پسند کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے کے جو دوسرے طریقے ہیں ان کو اپناتے ہیں اور ان طریقوں کو پسند نہیں کرتے. تو دو گروپ تو ہو گئے. تو جب دو گروپ ہو گئے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک گروپ کے طریقے پہ چلوں گا تو دوسرا گروپ مجھے پسند نہیں کرے گا, اور اگر دوسرا گروپ کے طریقے پہ چلتا ہوں تو پہلا گروپ مجھے پسند نہیں کریں گے. تو طے ہے کہ مطلب ظاہر مجھے ان کو مجھے وہ پسند نہیں کریں گے. تو جب طے ہو جائے گا اور مجھے پتہ ہے کہ طریقہ صحیح ہے اور لوگ غلطی پر ہیں تو پھر مجھے ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ بات طے ہو گئی کہ مطلب ظاہر اس نے تو میری مخالفت کرنی ہے اور طریقہ میرا صحیح ہے, اس کے طریقہ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں, صحیح طریقہ صحیح ہے. تو پھر ان کی پرواہ میں کیوں کروں, بس ٹھیک ہے پھر ان سے میں توقع ہی نہیں رکھوں کہ کبھی مجھے اچھا کہیں گے یا کسی طریقے سے مجھے ہاں اپنا سمجھیں گے. تو ظاہر مطلب ہے کہ اس مراقبہ کا ابھی تک الحمدللہ ماشاءاللہ اثر میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ عقلن تو ہو گیا کہ جو لوگ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ جہالت بھرے ہیں, وہ جہالت پر ہیں, ان کی وہ خود قابل علاج ہیں. ہاں جی, تو جب ایسے لوگ مجھ سے کوئی توقع کر لے ایسی کام کیجیے کہ ان کی طرح کروں, तो मैं क्यों मतलब जा रहे उनकी उनके उनके लिए अपने आप को खराब करूं। हाँ अलबत्ता जो अच्छे लोग हैं वो तो मुझे अपना समझेंगे, मेरे लिए दुआएं करेंगे, और ऐसे ही हुआ। तो तकरीबन 1 साल ये टेंशन रही, 1 साल ये टेंशन। इस असना में वो हमारी दाढ़ी मुकम्मल हो गई। हाँ जी, और माशाल्लाह बड़े बूढ़ों ने मुझे अपने साथ बिठाना शुरू किया, मशवरे करना शुरू किया, और इजारे के मुझे जो है ना वो एक माशरे में एक हैसियत वो देने लगे। तो फिर तो माशाल्लाह तआला ने आसानी बना दी। फिर इनका देखे देखी जो छोटे हैं ना, उन लोगों ने भी मुझे तस्लीम कर लिया और मुझे उन लोगों के साथ शामिल समझा जो अच्छे लोग होते। लिहाजा जब कभी कोई परेशानी होती थी तो मुझे ही अपने साथ रख, यानी मतलब भी कोई मसला होता। इससे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब देखे ना, वो 1 साल का मुजाहिदा था बस थोड़ा सा। हाँ जी, उस 1 साल के मुजाहिदे के बाद मामला क्लियर हो गया। अब चूंकि लोग जल्दी मचाते हैं और कहते हैं आनन फनन में हमारा काम हो जाए, तो अल्लाह पाक कर सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं है उसका, उसका तरीका नहीं है। वो जो है ना वो कर तो सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका तरीका नहीं है लिहाजा होता तो इस तरह है। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो तकालीफ है उनको याद करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकालीफ दी गई। अगर ये तकालीफ कोई मतलब जाहिर है कि गोया कि अल्लाह से दूरी की बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दी जाती। तो ये जो है ना ये वाली बात है कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में लेकर और अल्लाह जल्ल शानू के लिए इसको करने का जज्बा लेकर हम लोग आसानी से शुरू कर ले। मैं नहीं कहता हूँ कि मुश्किल से शुरू कर लो, आसानी से शुरू करने, आसानी से शुरू करने का मतलब ये कि जो सुन्नत है जिनकी कोई मुखालिफत नहीं है वहाँ से शुरू करो, क्योंकि वो कुछ माशरी सुन्नत की मुखालिफत होती है ना। तो जो माशरी सुन्नत नहीं, आप घर में सुन्नत के मुताबिक खाना खाते तो आपसे कौन नाराज़ होगा या क्या उनको पता चलेगा, वो तो आप कर ही सकते। अगर साहब सुन्नत के मुताबिक सोना शुरू कर ले तो आपको क्या मुश्किल है, आप सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनना शुरू कर ले तो आपको क्या मसला है, आप सुन्नत के मुताबिक जूते पहने तो उसका आपको क्या है, सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में दाखिल हो जाए मस्जिद से बाहर आ जाए, सुन्नत के मुताबिक बैतुलखला चले जाएँ उससे बाहर आ जाए, सुन्नत के मुताबिक लोगों के साथ मिले, तो इसमें क्या मसला है, इसमें तो मुश्किल ही नहीं है। वो जहाँ शादी के मसाइल है, दूसरी जगह है फौतगी के मसा, वो ज़रा माशरती चीज़ें हैं उस। तो अब पहले अपने अंदर रूहानी कुव्वत पैदा करें। तो रूहानी कुव्वत ये है कि जो सुन्नतें आसान है और उसमें कोई मुखालिफत नहीं है वहाँ से शुरू करो। और तरीका ये है कि जैसे जैसे आप आसान सुन्नतों पर अमल शुरू करेंगे तो उससे ज़रा मुश्किल सुन्नतें जो होंगी वो आपके लिए आसान होंगी। फिर जब आप उस पर अमल करेंगे तो उससे जो ज़रा मुश्किल होंगी वो आपके लिए आसान होंगी। फिर आप जब उस पर अमल करेंगे तो उससे ज़रा जो मुश्किल होंगी वो आपके लिए आसान होगी। इस तरीके से गोया कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बनाते जाएगा। हम जब जिस वक्त जाते हैं ना, ये लंबा रोड होता है सीधा, उस पर जाते हैं और उसके दोनों तरफ दरख्त होते हैं, तो हमें नज़र आता है कि आगे रास्ता बंद है मालूम होता है कि भाई ये तो हम इसके अंदर कैसे जाएंगे, आगे रास्ता बंद है। तो वो जो है ना मतलब ये रास्ता बंद नहीं होता, सिर्फ हमें नज़र बंद आता है। तो अब जैसे जैसे हम चलते जाते हैं तो उसके करीब होते जाते हैं, रास्ता खुलता हुआ महसूस होता है, पता चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से ही शैतान ने हमारे आंखों को ऐसे नज़रबंद कर दिया है कि हम समझते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई डरने की क्या बात है, आसानी से शुरू कर लो, आसानी से शुरू कर लो। तो वो जो मुश्किल है वो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वो आसान होता जाएगा। बाकी आपने कसम तो नहीं खाई ना कि मैंने नहीं करूंगा, सिर्फ ये वाली बात आपको मुश्किल नजर आती है। जब अल्लाह पाक आसान कर ले तो फिर क्यों नहीं करेंगे। और गंगू रहमतुल्लाह अलैह वाली बात कि उनने हजरत साहब से अर्ज किया था कि हजरत मैं बैत होता हूँ लेकिन एक जिक्र नहीं करूंगा, एक ताजुद नहीं पढ़ूंगा। तो हमने फरमाया ठीक है मंजूर है, लेकिन जिस वक्त अपने साथ उनको सला दिया, साथ चारपाई लगा कर, तो रात को हजरत 2 बजे उठे मामूल के मुताबिक, तो इनकी आंख खुल गई। फिर आँख बंद ही नहीं हो रही थी, मतलब ज़ाहिर है वो जो है ना वो बस वो नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा मैंने कोई कसम तो नहीं खाई कि मैं नहीं पढ़ूंगा ताजुद, चलो आज पढ़ लेता हूँ। उठे, वज़ू किया, हजरत के मुसल्ले के पीछे मुसल्ले बेचाया ने ताजुद पढ़ी, फिर हजरत ने जिक्र शुरू किया माशाल्लाह इबारा तस्बीह वाला। इस पर जो है ना उन्होंने कहा कि मैंने कोई वो तो नहीं किया, मतलब कसम तो नहीं खाई कि मैं नहीं करना, चलो आज कर लेता हूँ। वो जो किया तो सुभान अल्लाह, राज साहब ने सुबह कहा कि भैया आप तो बड़े मशाक जिक्र जाकिर की तरह जिक्र कर रहे थे, तो उसके बाद तो हज़रत ऐसे उस पर उम्र मेटे गए, उम्र भर वो करते रहे। अब जो चीज़ इतनी मुश्किल नज़र आ रही थी, मतलब ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने उसको इतना आसान कर दिया। तो ऐसे ही होता है, जितने भी अल्लाह वाले हैं बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ख़राब माहौल से कट के आ चुके होते हैं। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, अच्छा ये वो लोग थे, लेकिन बाद में माशाल्लाह ऐसे अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, अवलिया अल्लाह होते हैं। तो दोस्ती का रास्ता तो यही है कि सुन्नतों पर अमल है। हाँ जी, क्योंकि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउन हुब्बुल्लाह। ए मेरे अभी अपने उम्मत से कह दे, अगर तुम अपनी उम्मत अपने अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करना चाहते हो मेरे तबाह कर लो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लेंगे, तो तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तो जब ये वाली बात है तो सुन्नतों वाला तरीका तो दोस्ती का तरीका है। इस वजह से हम लोग दूसरा मॉडल है ना, यानी मतलब यह है कि हमारे पास नमूना मौजूद है, यानी हर चीज़ का नमूना हमारे पास मौजूद है। और फिर इतने अल्लाह ताला ने करम किया कि आप सब की सुन्नत अल्लाह पाक ने ऐसे महफूज कर दी कि इतने हिफाजत तो किसी भी की नहीं है, किसी की भी नहीं है कि भले किसी के यानी न पैगंबर न उलिया न कोई और, हाँ जी, जिनके यानी बातों की इतनी हिफाजत की गई हो, इतना अल्लाह पाक ने उसके लिए निज़ाम बना दिया। तो लिहाजा हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मौजूद है, तैयार हैं, सिर्फ ये कि अमल करना है। और अमल करने में भी आसानी का मैंने अर्ज़ कर लिया कि आसानी का रास्ता ढूंढ लो, इब्तदा में बिल्कुल आसान आसान सुन्नतों पर अमल कर लो और अल्लाह पाक से मांगते रहो। हाँ जी, अल्लाह पाक से मांगते रहो, अल्लाह ताला आसान बनाने वाला है, अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसान कर दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनके बारे में हज़रत ने हदीस शरीफ फरमाई कि जो सुन्नतों को ज़िंदा करता है, जब जो जो मुर्दा सुन्नत उसको ज़िंदा करता है तो उसको 100 शहीदों का अजर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ये नेमत नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.